हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी ने अमन को आगे की कहानी बताई, कैसे उसे विधिक की सच्चाई पता चली और उसके बाद उसे मलिक ने किडनैप कर लिया। मलिक के यहाँ से निकलने में एक सीक्रेट एजेंट मैट ने उसकी मदद की थी। बदकिस्मती के चलते विधिक ने उसे फिर ढूंढ लिया था और जैसे तैसे उसने विधिक से पीछा छुड़ाया। ओके, फिर तुम लंदन से भागने की बात कहाँ गई? अमन ने आगे पूछा। करना क्या था, उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गई। मैं लगभग 3 से 4 महीने तक वेकेशन का बोलकर अपनी दादी के साथ रह रही थी। बाद में घर वाले मुझे फिर से लंदन जाने के लिए प्रेशराइज करने लगे और वहाँ से बचने के लिए मैंने जॉब करने का सोचा। बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। आंशी ने उसे आगे के बारे में सब बता दिया। विधिक और आंशी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी सारी कहानी पूरी होने के बाद तेज प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। उनके कमरे में आते ही आंशी ने अमन की तरफ देखा। उनके आते ही अमन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मिस्टर दत्त आंशी के सामने बैठे थे जबकि बाकी टीम उनके आसपास खड़ी थी। तुम सच में बहुत बहादुर हो जो उस जल्लाद से बचकर भाग आई। अब से पहले हमने जितने भी मेल या फीमेल एजेंट उसके पास भेजे हैं उनकी लाश तक ठीक से नहीं मिली, मिस्टर दत्त ने कहा। इसमें इसकी बहादुरी की दाद देना गलत होगा सर, लावण्या बीच में बोली। विधिक राणा जैसे इंसान से बचकर आना किसी की किस्मत ही हो सकती है और ये तो कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत है। वो इसे प्यार करता है और यही उसकी कमजोरी है। यही वजह है कि विधिक चाहकर भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। और तुम्हें किसने कहा उसने मुझे हर्ट नहीं किया? आंशी ने लावण्या की तरफ गुस्से से देखा। हाँ, तुमने बताया ना अभी कुछ देर पहले, उसने तुम्हें तुम्हारे घर पर बंदी बना रखा था, बांध कर रखा और उसकी वजह से तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ा, जस ने कहा। आंशी, मिस्टर दत्त ने गंभीर आवाज में कहा, तुम विधिक के साथ बहुत टाइम तक रही हो, क्या तुम्हें उसके सीक्रेट प्लेसेस, कोई भी इल्लीगल काम या कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता है? मुझे सच में कुछ नहीं पता। जब मुझे उसके क्रिमिनल होने की बात पता चली तो मैं वहाँ से भाग गई। मुझे तो यही लगता था कि वो होटल इंडस्ट्री में है, आंशी ने जवाब दिया। सिर्फ दुनिया की नज़रों में, मिस्टर गुप्ता ने कहा। अच्छा आंशी, तुम्हें क्या लगता है विधिक राणा क्या चीज़ है? वो क्या कर सकता है, इसका कुछ आइडिया है तुम्हें? वो एक मर्डरर है, बस अपने फायदे के लिए किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। शायद वो ये सब अपना बिजनेस फैलाने के लिए कर रहा है, लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उन्हें धमकाता है, आंशी ने मासूमियत से जवाब दिया। उसके बाद सुनकर अमन धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो, विधिक राणा की उतनी ही सच्चाई सुनकर ही भाग गई। वो क्या चीज़ है तुम्हें तो अंदाज़ा तक नहीं है। अंदाज़ा अब तक नहीं होगा पर अब हो जाएगा, कहते हुए लावण्या ने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को कनेक्ट किया। सामने विधिक की बड़ी सी तस्वीर थी। ये दिखने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। अक्सर लड़कियां इसकी अच्छी शक्ल को देखकर इसके प्यार में पागल हो जाती हैं, जबकि उन्हें तो पता तक नहीं ये इंसान कैसा है। लावण्या का इशारा सीधा सीधा आंशी की तरफ था। उसने आगे कहा, तुम जिस होटल इंडस्ट्री की बात कर रही हो उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में विधिक राणा के 100 से भी ज्यादा होटल्स होंगे जो उसने इल्लीगल तरीके से खड़े किए हैं। लोगों की नज़रों में वो होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बड़ा बिजनेसमैन है, पर इसका दूसरा सच कुछ और ही है। तुम्हें पता है ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारा देश तो छोड़ो, उसने किसी देश को नहीं छोड़ा। खुद के फायदे के लिए ये वहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराता है। ये यहाँ किस लिए आया है तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। इसने किसी के साथ डील की है कि पूरे इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट कराएगा और भगवान जाने ये आखिर चाहता क्या है। इसने बहुत से मासूमों की जान ली है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज को जाने दें तो ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गोल्ड डायमंड स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग और ना जाने कौन कौन से गलत कामों में इसका नाम जोड़ा हुआ है, जस ने आगे बताया। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने अब तक इसे पकड़ा क्यों नहीं, आंशी ने पूछा। ये इतना आसान नहीं है आंशी, तुम्हारे लिए उससे बचकर भागना बहुत आसान था। वो तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकता था, पर इसके खिलाफ जाने वाले लोगों को मारने से पहले ये एक सेकंड भी नहीं सोचता। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है अब तक, मिस्टर दत्त ने बताया। तुम जानती हो जब मैं पहली बार विधिक के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर पर गई तो एक लड़की की लाश लगभग 3 दिन तक उसके घर के किसी कमरे में फ्रीजर में थी। उस कमरे में और भी लाशें थी जिसे सिर्फ उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए मारा होगा, लावण्या ने बताया। हमारी एक एजेंट अभी विधिक के साथ रहती है, अभी तक विधिक को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और इस तरह के केसेस हैंडल कर चुकी है। वो तब तक बची हुई है जब तक विधिक के सामने उसकी सच्चाई नहीं आ जाती है। उसी के जरिए हमें तुम्हारे बारे में पता चला, मिस्टर दत्त ने आंशी को बताया। हालांकि उसने आंशी के सामने दिव्याना का नाम रिवील नहीं किया था। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ना केवल तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बल्कि तुम्हारे पापा भी कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे ही अमन ने कहा, आंशी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। मुझे ऐसे मत देखो, उस वेडिंग फंक्शन में तुम्हें रॉबिन और मिलिसा तो याद ही होंगे, वो हमें पहले क्लब में मिले थे। तुमने ही बताया था ना, वो तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स हैं, वो विधिक के ही साथी हैं। हालांकि वो उसके जितने खतरनाक नहीं हैं, पर उनके तार भी माफिया से जुड़े हुए हैं। अमन ने पूरी बात बताई। अपने पापा के बारे में सुनकर आंशी को सदमा सा लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। तो क्या इसीलिए पापा ने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा? अगर तुम्हारे पापा भी उनसे जुड़े हुए हैं तो तुम्हें तैयार रहना होगा बेटा। अब तक हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर सारी इन्फॉर्मेशन आने पर हमें उन्हें भी अरेस्ट करना होगा, मिस्टर दत्त बोले। आंशी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ बैठी थी। आज का दिन उसके लिए काफी भारी था, पहले विधिक के बारे में सब कुछ बताना और फिर अपने पापा के बारे में पता चलना। उसे एजेंसी आए हुए काफी टाइम बीत चुका था और रात के 8 बज गए थे। इस बीच उसने कुछ भी खाया नहीं था। आज के लिए इतना काफी होगा, तुम्हें विधिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, पर हम फिर भी चाहते हैं कि हम जब कभी भी विधिक को अरेस्ट करें तो तुम वहाँ रहो, मिस्टर दत्त ने कहा। आंशी ने उनकी बात पर हामी भरी। इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद मिस्टर दत्त ने अमन से आंशी को घर छोड़ने को कहा। अमन आंशी के साथ गाड़ी में था और दोनों घर जा रहे थे। आंशी चुपचाप मायूस होकर बैठी थी। मैंने कहा था ना, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा, अमन ने उसका मूड सही करने के लिए कहा। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, पर विधिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं था वो इतना। खैर छोड़ो, मैं उसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ, मेरे पापा वो भी वैसे ही हैं, आंशी ने परेशान स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर अमन भी चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आंशी को कैसे संभाले। अच्छा है, मैं इन सबसे दूर जा रही हूँ, मेरा यहाँ भी दम घुटने लगा है। 2 दिन बाद मैं स्विट्जरलैंड में होंगी और एक नई शुरुआत करूँगी, आंशी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी ये बात सुनकर भी अमन चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो आंशी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझे स्विट्जरलैंड नहीं जाने दोगे? आंशी ने पूछा। बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ी रुक कर चले जाना, अमन ने जवाब दिया। उसके कहने का मतलब साफ था कि अभी एजेंसी की तरफ से आंशी को क्लीन चिट नहीं मिली थी।
वो गुस्से से अमन की तरफ देख रही थी। तुम बहुत झूठे हो, हर बार तुमने मुझे धोखा दिया है, पता नहीं मुझे ही हर बार गलत इंसान पर यकीन क्यों होता है। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हारे साथ सब प्यार से पेश आए। शुक्र मनाओ, हम दोनों की शादी हो गई तो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वरना। अमन बोलते हुए रुक गया। वरना क्या? आंशी ने पूछा। वरना विधिक जैसे क्रिमिनल की कमजोरी हाथ लगना कोई मामूली बात नहीं है, सब तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। क्या पता तुम झूठ बोल रही हो, हम लोग सच उगलवाने के लिए किस हद तक जाते हैं, मूवीज तो देखी है ना तुमने। अमन आंशी को परेशान करने के लिए ये सब कह रहा था। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हद होती है यार, अभी गाड़ी रोको, मैं पैदल चली जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या पता रास्ते में मारकर मेरी लाश कहीं गाड़ दो। नहीं, तुम लोग मेरी लाश का भी यूज करोगे और उससे विधिक को ब्लैकमेल करोगे। आंशी गुस्से में स्टेयरिंग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। अमन से गाड़ी का बैलेंस बिगड़, वो गुस्से से अमन की तरफ देख रही थी। तुम बहुत झूठे हो, हर बार तुमने मुझे धोखा दिया है, पता नहीं मुझे ही हर बार गलत इंसान पर यकीन होता है। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हारे साथ सब प्यार से पेश आएं। शुक्र मनाओ, हम दोनों की शादी हो गई तो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वरना। अमन बोलते हुए रुक गया। वरना क्या? आंशी ने पूछा। वरना विधिक जैसे क्रिमिनल की कमजोरी हाथ लगना कोई मामूली बात नहीं है, सब तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। क्या पता तुम झूठ बोल रही हो, हम लोग सच उगलवाने के लिए किस हद तक जाते हैं, मूवीज तो देखी है ना तुमने। अमन आंशी को परेशान करने के लिए ये सब कह रहा था। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हद होती है यार, अभी गाड़ी रोको, मैं पैदल चली जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या पता रास्ते में मार कर मेरी लाश कहीं गाड़ दो। नहीं, तुम लोग मेरी लाश का भी यूज करोगे और उससे विधिक को ब्लैकमेल करोगे। आंशी गुस्से में स्टेयरिंग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। अमन से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। उसने आंची को अपने हाथ से दूसरी तरफ धकेला और गाड़ी का ब्रेक लगाया। हाँ, तुमने मुझे धक्का दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी, आंची ने गुस्से में कहा। ऊपर से तुम लोग भी मेरे साथ कुछ कम गलत नहीं कर रहे। अरे, कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सोचा था सब भूल कर स्विट्जरलैंड चली जाऊंगी, पर नहीं, तुम्हें तो वहाँ भी चैन नहीं आना। आंशी लगातार अमन को सुनाई जा रही थी। तभी अमन के फोन पर तेज प्रताप दत्त का मैसेज आया। उसने गाड़ी रोककर मैसेज चेक किया। वो आंशी के लिए था। उन्होंने उसे अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी थी। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम स्विट्जरलैंड जा सकती हो, अमन ने बुझी आवाज में कहा। क्या सच में? अब मैं आराम से स्विट्जरलैंड जा सकती हूँ, जरूर मुझे क्लीन चिट मिल गई होगी, आंशी ने खुश होकर कहा। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी वापस स्टार्ट की। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक अमन ने एक होटल के आगे गाड़ी रोकी। तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, अब तो तुम्हें क्लीन चिट भी मिल गई और तुम स्विट्जरलैंड भी जाने वाली हो। न जाने फिर हम कभी मिले या नहीं, एक आखिरी डिनर मेरी तरफ से, कहकर वो गाड़ी से बाहर निकला और आंशी के लिए दरवाज़ा खोला। आंशी ने भी उसे मना नहीं किया। वो दोनों किसी होटल में थे और साथ में खाना खा रहे थे। अच्छा, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लावण्या अच्छी लड़की है, मुझे नहीं पता था वो एक एजेंट भी है। अब मुझे समझ आया तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो, अमन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे, साफ पता चलता है कि तुम उसकी बातों से इरिटेट हो जाते हो। देखो, पूरी लाइफ का सवाल है, ये सोचकर शादी मत करो कि वो एक एजेंट है और तुम्हें उससे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अमन के बिना कहे ही आंशी ने सब समझ लिया। फिर वो अचानक बोली, वैसे मैं भी तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ, हमारी भी शादी हो गई है, पर हम साथ नहीं रहेंगे, अगर साथ रहते तो तुम्हें मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डिनर हो जाने के बाद वो दोनों आंशी के घर जाने के लिए निकल गए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उनके घर के आगे रॉबिन और मेलिसा की गाड़ी खड़ी थी। चलो अब जाओ भी, अब क्या मुझे अंदर तक छोड़ने आओगे, आंशी ने गाड़ी से उतर कर कहा। क्या पता आ भी जाऊं, अमन ने जवाब दिया और जल्दी से गाड़ी के बाहर निकला। उसने आंशी से कहा, कहा था ना तुम्हारे पापा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, अब उसे प्रूफ करने का टाइम हो गया है। ये गाड़ी रॉबिन और मेलिसा की है, ये गाड़ी तुम्हारे घर के आगे खड़ी है, इसका मतलब वो दोनों अंदर हैं। जाने से पहले इतने झटके दे दिए वो काम थे क्या जो अब? और आंशी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अमन उससे पहले घर में एंटर होने लगा। आंशी उसके पीछे तेज कदमों से चलकर गई। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा रॉबिन और मेलिसा मिस्टर जिंदल के साथ बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें एक साथ देखकर आंशी का चेहरा उतर गया। अपने पापा की सच्चाई इस तरह उसके सामने आएगी उसने कभी नहीं सोचा था। वो इस समय ब्रोकन फील कर रही थी, इसलिए उसने अमन का हाथ पकड़ लिया।